ॐ शांति ॐ शांति ॐ शांति। बहुत सुंदर गीत सुना, बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। ज्ञान रत्नों से तो श्रृंगार करते ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ कितना भाग्य हमारा उज्जवल बनाया है, कितना अति इंद्रिय सुख दिया है, जिसको हम सभी महसूस करते हैं, सभी करते हैं। तो बाबा ने इतना दिया है, तो बाबा को हम कितना थैंक्स देते हैं। उस दिन भी बाबा ने कहा कि जैसे आँख खुले बाबा को गुड मॉर्निंग की, उसके बाद क्या करना है, बाबा को थैंक्स देना है, धन्यवाद देना है कि बाबा आपने हमें कितना कुछ दिया है, हमारा सब दुख हर लिया है, इतनी शक्ति भरी है, तो धन्यवाद भी करना है। धन्यवाद करते हैं ना हम सभी, धन्यवाद करते हैं हाँ, बाबा को धन्यवाद करो। दुनिया में तो कितना दुख है, कितनी अशांति है, कितना रोते रहते हैं, लेकिन हम बच्चे बाबा के अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अब बाबा को तो थैंक्स देंगे, लेकिन आपस में क्या करेंगे? तो आज बाबा ने कहा आपस में एक दो को बधाई दो, मुबारक दो। किस बात की मुबारक, हाँ किस बात की मुबारक दो कि बाबा हमको क्या से क्या बना रहे हैं, हमें किस दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो एक दो को मुबारक दो, एक दो के भाग्य को मुबारक दो, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं आपस में एक दो को मुबारक दे दे, किसका जन्मदिन होता है, शादी का सब कोई होता है, एनिवर्सरी, कोई नया मकान बनाते हैं, कोई ऐसा बड़ा प्रसंग होता है, खुशी का माहौल होता है तो बधाइयाँ देते हैं ना, कोई उत्सव होता है तो बधाइयाँ देते हैं, मुबारक देते हैं। बाबा कहते तुम भी एक दो को मुबारक दो, वाह मेरा भाग्य, वाह आपका भाग्य, तो मुबारक भी देते, बाबा को धन्यवाद और एक दो को मुबारक। अब बाबा तो सभी आत्माओं का पिता है, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो बाबा उसका पिता है। तो आज बाबा ने मुसलमानों को याद किया है, वो भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अब उनकी कैसे सेवा करें वो आज बाबा ने बताया। तो सेवा की भी कई बातें बाबा ने आज सुनाई है। वैसे इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में स्वर्ग और ईश्वर का घर एक ही समझते हैं, समझते हैं अल्लाह बहिष्ट में है, गॉड लिव्स इन हेवन। हम भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं तो वहां भी यही कहते थे, आवर फादर विच आर्ट इन हेवन, हे परम पिता आप स्वर्ग में रहते हो। तो आप स्वर्ग में रहते हो, तो आप जैसे स्वर्ग में रहते हो उस धरती को भी स्वर्ग बनाओ। तो स्वर्ग और परम धाम दोनों को मिक्स कर दिया है, लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग तो सृष्टि पर है और परम धाम तो पांच तत्वों से पार है। तो आज बाबा ने उसको भी स्पष्ट किया है, सभी धर्मों की आत्माओं के लिए ये ज्ञान मिली है वास्तव में। तो बाबा कहते हैं कि और धर्म वालों को ये नहीं ख्याल चलना चाहिए कि हम क्यों नहीं सतयुग में आएंगे, तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो वही आएंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे, और धर्म वाले तो नहीं आएंगे। लेकिन कई बाबा के बच्चे कन्वर्ट हो गए और धर्म में चले गए हैं, तो फिर वापस आते हैं, और वापस आते हैं तो फिर कहेंगे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है जो फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गई है। द्वापर से तो कितना कन्वर्ट होते गए, नहीं तो भारत की संस्कृति, भारत की संख्या, मानो जो भी देवता से चलो हिंदू बन गए उनकी संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। लेकिन बाबा कहते और धर्म वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए। अब जो कन्वर्ट हो गए वो वापस आएंगे। तो आज बाबा ने ये बातें भी सब स्पष्ट की है। सुनते बाबा के माँ वाक्य, हमारे पास डबल विदेशी आते हैं ना, अब जन्म तो किसी और धर्म में लिया लेकिन बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो वो भी यही कहते हम आदि भारतवासी है। आदि शुरू में हम भारतवासी ही थे, ये तो बाद में और धर्म में चले गए और देशों में चले गए, तो वापिस आ जाते हैं। और भारत से बहुत प्यार है क्योंकि भारत से ही वो आत्माएं विदेशों में गई है, वहां के बन गए हैं। तो आज 6/9/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं, सबको सुख धाम का रास्ता बताएं, ये चिंता रहे। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है ना, फर्स्ट प्राइज ली तो कितनी मुबारक सब देते हैं, कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं है। बाबा साफ कह देते वो सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? तुम सब बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। कितने लकी हो आप, बाबा के बन गए, भगवान के बन गए, भगवान ने आपको एडॉप्ट किया है, तो उसकी मुबारक एक दो को देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब है, जितने हम खुश नसीब है आप भी खुश नसीब हो, जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं, कितने खुश नसीब है। तुम्हें दिल दिल में खुशी होती है, तो जिनको दिल ही दिल में खुशी होगी वो फिर औरों को भी खुशी देंगे, उनको भी मुबारकबाद देंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता, परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए हैं, इसलिए अब भूल गए हैं तो दुखी हो गए हैं, इसीलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में कैसे हम चले जाएंगे। बाप आए हैं सब दुख हरने, फिर हम सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में जाएंगे और कुछ कहाँ जाएंगे, शांति में जाएंगे। कुछ सतयुग में आएंगे, कुछ शांति धाम में रहेंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते फिर कोई त्रेता में पाठ बजाते, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में है। उनको कहेंगे, मुक्ति धाम को क्या कहेंगे, ईश्वर का घर, ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए बंदगी करते हैं? क्या बहिष्ट के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? किस लिए बंदगी करते हैं, बहिष्ट में जाने लिए या अल्लाह के पास जाने लिए? अब अल्लाह के घर को तो बहिष्ट नहीं कहेंगे ना, अल्लाह तो बहिष्ट में रहता ही नहीं है, वो तो अपने धाम में रहता है। बहिष्ट में तो हम बच्चे रहते हैं। अल्लाह के घर को बहिष्ट नहीं कहेंगे, वहां तो आत्माएं, अल्लाह के घर में आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहता। ये जानते होंगे कि अल्लाह के पास शरीर से नहीं, हाँ ये तो जरूर जानते होंगे, अल्लाह के पास जाएंगे तो शरीर के साथ थोड़ी जाएंगे, शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। चलो अल्लाह के पास हम जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं सिर्फ अल्लाह को याद करने से पवित्र तो नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं है, अब जान जाए फिर याद करे तो शक्ति आए पवित्र बनने की, लेकिन जानते ही नहीं है, अल्लाह को तो जानते ही नहीं है। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उनको कैसे समझाए। बाबा को भी होना लगता है, कैसे समझाए सबको। सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार उनको ये चिंतन रहता है, कैसे उनको समझाए। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र के मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दे। हमको तो बाबा ने परिचय दिया है अपना और अपनी रचना का, लेकिन हम अभी औरों को कैसे दें। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिष्ट में सब तो जाएंगे नहीं, वहां तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में है। अब उसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है, हम क्यों नहीं स्वर्ग में है, हम शांति धाम में क्यों है, बाबा कहते नाराज होने की बात ही नहीं है। मनुष्य शांति मांगते हैं वो तो मिलती ही है। हाँ कहाँ मिलती है, अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। शांति चाहते ना, सब शांति चाहते हैं, तो वो कहाँ मिलेगी, अल्लाह या गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती है शांति धाम से, फिर तब जाएंगे शांति धाम में। फिर कब जाएंगे, जब नाटक पूरा होगा। तो बाप आते भी हैं पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। बाबा क्यों आते हैं, भगवान क्यों आते हैं, सबको इस पति दुनिया से ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं फिर सुख धाम में आएंगे, पता है ना सबको। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात किसको कहेंगे, पुरुषोत्तम उत्तम से उत्तम पुरुष, उनको पुरुषोत्तम कहेंगे। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकती। कोई भी आत्मा उत्तम पुरुष तब बनेगी जब वो पवित्र बनेगी। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो, और साथ में मुझे याद करो सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए, सब चरित्रहीन है, सबके चरित्र बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर सबके बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को फिर कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, है ना। भले कितने भी अच्छे पुरुष हो, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे चरित्रवान हैं, लेकिन वो भी किसके आगे माथा टेकेंगे, जो चरित्रवान है उनके आगे। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर से वर्णन भी करते हैं। देवताओं के कैरेक्टर चरित्र वर्णन करते हैं तो सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, तो उनके चरित्र का वर्णन करते हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को कैसे समझाएं। बाबा को भी फुरना हो गया, तुम बच्चों ने तो समझ लिया, अब औरों को कैसे समझाएं। कौन सी सहज युक्ति रचें। ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। ऐसी युक्तियां रचे जिनसे आत्माओं का तीसरा नेत्र खुल जाए। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, कहिए ना, अभिमान वश कहते हैं मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत कुछ पढ़ा है, मैं तो बहुत सब कुछ जानता हूँ, तो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, समझते हैं मेरे अंदर बहुत ज्ञान है। अब बाबा कहते हैं, अब बाबा क्या कहते हैं, जो अपने को बहुत ज्ञानवान, बहुत होशियार, बहुत समझदार समझते हैं, बाबा कहते हैं ये सब बेअभिमान है। ये अभिमान वश कहते हैं मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान है या दुनिया का ज्ञान है, पर भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं वो तो उनको है ही नहीं, चाहे दुनिया का कितना भी उनको ज्ञान हो, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये भी बेअभिमान है, इतना अभिमान दिखाना, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, और बाप का ज्ञान तो जब बाप आए तब देवे, उनके पास भगवान का ज्ञान नहीं है, भगवान जो ज्ञान देते वो नहीं है, फिलोसॉफी बहुत है, भले PhD भी कर ले, कितनी बड़ी डिग्रियां ले ले, लेकिन बाबा कहते हैं बाप का ज्ञान उनके पास नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप का ज्ञान तो जब बाप आए तब देवे, तो युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, अब भगवान को तो जानते ही नहीं है। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति न इति, माना उनका अंत हमने नहीं पाया है, हम नहीं समझ पाए ईश्वर को, वेदों में तो यही लिखा। तो ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। हाँ, ये तो समझते हैं कि मनुष्य कोई भी देहधारी भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचयिता है, परंतु वो कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, हाँ वो नहीं जानते। कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, नाम रूप से न्यारा है, न नाम है न रूप है न गुण, इसलिए निर्गुण निरंजन निराकार कहते हैं। तो निर्गुण है, तो निर्गुण माना कोई वो गुण नहीं, जो आत्मा के गुण है वो तो सब है उनमें, परंतु जो देह के गुण है या प्रकृति के गुण है, बाबा कहते वो तो परमात्मा में नहीं है। प्रकृति के गुण सतो रजो तमो, ये तीन गुण माने जाते हैं, भगवान तो कभी इन गुणों में जाता ही नहीं, इसलिए निर्गुण का। तो बाबा कहते हैं उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती है। अब जिसका न नाम है न रूप है न गुण है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो भगवान भी क्या है। तो फिर कई किसी ने हमको समझाने की कोशिश की, और नेम लेस फॉर्म लेस ये लेस ये, नहीं नहीं नहीं, तो जो बाकी बचे ना वो भगवान है। अब बताओ बाकी बचे वो भगवान, बाकी क्या बचता है। लेकिन सीधा है ना, जैसे नाक को पकड़ना है तो सीधा पकड़ो ना, वो उल्टा करके क्यों पकड़ो। तो बाबा कहते हैं जो बाकी बचे की बात नहीं है, क्योंकि नाम रूप देश काल ये जो कुछ है ये सब प्रकृति की चीजें हैं, भगवान प्रकृति से ऊपर है। इसीलिए कहेंगे भाई न नाम है न रूप है, परंतु वो प्रकृति से ऊपर है ये नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु तो हो कैसे सकती है, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं, अभी बाबा स्पष्टीकरण देते हैं कैसे वो नाम रूप है उनका, अगर कहते हैं पत्थर ठिकर कच्छ मच्छ सब में है तो वो नाम रूप हो जाता ना, सब में भगवान है। अब सब में भगवान है तो सब नाम रूप है ना। कब क्या कहते रहते हैं, तो बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं, ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करते हैं, परंतु मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। तो देवताएं क्योंकि उत्तम है, वो उत्तम पुरुष है। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है, मनुष्य फिर देवताओं और भगवान को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करते। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे, चलो कितनी भी बंदगी करो, बाबा कहते अभी तो नहीं पहुंच सकेंगे, अभी तो कोई भी मुक्ति में नहीं जा सकता है, अल्लाह के पास तो नहीं पहुंच सकेंगे। तो मुख्य बात है कि अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, उनको समझाओ अल्लाह के पास तुम कैसे पहुंच सकते हो, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े, कैसे सब धर्मों की आत्माओं को भी हम समझाएंगे। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, मुंशी बाबा थोड़ी विचार सागर मंथन करते हैं, जब आते हैं वाणी मुरली सुनाते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में, तो कोई विचार सागर मंथन करके थोड़ी आते हैं, वो तो जो कल पहले सुनाया था बाबा कहते वही सुनाता हूँ। तो विचार सागर मंथन कौन करते है, ब्रह्मा बाबा, 2 बजे उठ करके बाबा ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करते थे। हाँ, एक बार दादी जानकी बताते ना, दादी उनके कमरे में गई सवेरे सवेरे, तो बाबा बैठे थे पलंग पर, अभी 3 भी नहीं बजे थे, तो दादी ने सोचा मैं बाबा के पास जाऊं देखूं बाबा क्या कर रहे हैं, लेटे हैं क्या है। तो गई तो बाबा से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो, तो बाबा ने कहा मैं बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना रहा हूँ, बच्चों को खिलाना है ना, सवेरे हलवा बना रहा हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा विचार सागर नहीं मंथन करते थे, बस शिव बाबा आएंगे वो कह के चले जाएंगे, लेकिन गुलजार दादी जरूर वो नहीं मंथन करती थी। हम कई बार दादी गुलजार से पूछते थे जिस दिन बाबा को आना होता, क्योंकि साइलेंस में रहती थी उस दिन, बिल्कुल साइलेंस में, ज्यादा किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। जिस दिन शाम को बाप दादा को आना होता था, तो एक दिन हम चले गए, हमने कहा दादी आपको विचार सागर मंथन करना होता है, दादी कहती मैं क्यों करूं, वो तो बाबा आकर के उनको जो बोलना वो बोलेंगे, मैं क्यों करूं, मैं तो बस बाबा की याद में रहती हूँ। तो गुजरात दादी को नहीं करना, अब एक बाप दादा जब आते वो तो होती ही नहीं है वहां। तो देखो बाबा कैसे, ब्रह्मा बाबा को विचार सागर मंथन करना, शिव बाबा को नहीं करना। तो बाबा कहते हैं अब ये सब बातें कैसे समझाएं, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े, कैसे सब धर्म वाली आत्माओं को समझाएं। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, बाप क्या करते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते, लेकिन बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। कैसे मंथन करो। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है, पवित्र धाम है वो, प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी, पवित्रता अपवित्रता। सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना पड़ता है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, सिर्फ भारतवासी ही होते हैं सुख धाम में, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। और उस समय जो आत्मा होगी वो सब भारत ही कहलाता है ना, तो इसीलिए कहेंगे ना भारतवासी ही सुख धाम में होंगे, और तो कोई खंड होंगे नहीं, और तो कोई देश होंगे नहीं, तो वो सब सारा ही भारत है, तो इसलिए भारतवासी ही बाबा कहते हैं सुख धाम में होंगे। बाकी सब शांति धाम में जाते हैं, शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो, पर कैसे पहुंच सकते हो ये उनको कैसे बताएं। अब उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि अल्लाह के पास कैसे पहुंच सकते हो, अल्लाह के पास तुम कैसे पहुंच सकते हो। उसके लिए बाबा कहते हैं देह के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो, तब तुम अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। भगवानों वाच्य तो है ही, देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो, ये तो भगवानों वाच है ही। मेरे को याद करने से ये जो पांच भूत है वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, बाबा को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया ना कि जाऊं मैं सृष्टि पर जाऊं, मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं, मैं जाऊं बच्चों को सुख देने। तो बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं जाकर सबको सुखी बनाऊं, साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। जैसे बाप सबको सुखी बनाते हैं तो बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे, तो ये विचार सागर मंथन करो। हाँ, नशा चढ़ाते हैं बाबा कि तुम मेरे मददगार हो, मैं अकेला क्या करूंगा। ये बाबा कहते हैं अकेले बाप क्या करेंगे, तो ये विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो पहले ऊंच होते हैं फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, एकदम से तो नहीं नीचे गिरते ना, तो पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं हो जाएंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो और क्या उपाय करे। ब्रह्मा बाबा को ये ख्याल चलता, और क्या उपाय करे जो उनको समझ में आए। अभी तो देखो बहुत सहज हो गया सब, बाबा का ज्ञान देना, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो और क्या उपाय करे। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है, समय है, बाबा दे रहे हैं विनाश समय है, अभी विनाश में उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। हट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते, संपूर्ण बनने के लिए भी टाइम मिला हुआ है, और सबको संदेश देने के लिए भी टाइम मिला हुआ है। चंद्रमा भी थोड़ा थोड़ा करके आंखें संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, तो सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना, वो तो है जड़, वो तो है जड़, फिर ये है चैतन्य। वो तो है जब कि ये है चैतन्य, हर चीज प्रकृति के अंदर हर चीज सतो रजो तमो से गुजरती है, तो प्रकृति तो फिर भी जड़ है, कई जो भी वस्तुएं हैं वो सब सतो रजो तमो से गुजरती है। अब आत्मा है चैतन्य, तो हम कैसे समझाएं मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो नमाज, ये विचार सागर मंथन करना है। तो बड़े दिनों पर प्रोजेक्टर आदि भी, बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं, सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो ये है, कौन सी मुबारक, सच्ची मुबारक है। अब मुबारक तो ये है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, वो होगी सबसे श्रेष्ठ मुबारक। जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो कि सब सुख धाम में चल रहे हैं, मुबारक हो मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं, कोई फर्स्ट प्राइज लेते हैं, जीतते हैं, तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो आशीर्वाद देते हैं उस कपल को, हाँ कि सदैव खुश सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दे। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं, तुमको तो मुबारक मिल सकती है, तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राइस तुमको मिल रही है, बाप दे रहे हैं, इसलिए बच्चों को मुबारक हो। हम बाबा को थैंक्स देते हैं, बाबा बच्चों को मुबारक देते हैं, तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दे, हाँ कैसे ये सब करें, तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। क्यों नहीं लोग हमें मुबारक दे रहे हैं कि आप सुखधाम में जा रहे हो मुबारक हो, आप स्वर्ग में जा रहे हो मुबारक हो, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि तुमको जानते ही नहीं है, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, कौन सी भगवान की मदद कर रहे हो, वो मनुष्य समझते नहीं है, इसलिए आपको मुबारक भी कैसे देंगे, तुमको जानते ही नहीं है। मुबारक देंगे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने, अब खुद तो अभी बने नहीं है मुबारक पाने के लायक, तो तुमको भी कैसे देंगे, तुम तो गुप्त हो ना, इसीलिए कोई जानते नहीं, इसीलिए हमेशा ये प्रश्न चिन्ह रहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है, क्या करती है, कौन सी सेवा करती है, प्रश्न ही पूछते रहते हैं। फिर जब यहाँ आते हैं और देखते हैं तब उनकी आंखें खुलती है। तो तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो, मुबारक हो किस बात की, कि हम बेहद के बाप के बने हैं। अब एक दो को मुबारक देना, मुबारक हो हम एक बाप के बने हैं, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो, कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं ना मुबारक हो, बच्चे पास होते हैं पढ़ाई में स्कूल कॉलेज में पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं, तुमको तो दिल ही दिल में खुशी होती है। अपने को मुबारक दो, खुद को भी मुबारक दो, औरों को तो दो लेकिन खुद को भी मुबारक दो, कैसे देंगे, यहाँ कहते हैं वारे में अपने को भी मुबारक दो, खुद को भी प्यार करो। तो बाबा ने हमको कितना बड़ा भाग्य दिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तो खुद को भी आप मुबारक दो, तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो, हमको बाप मिला, हाँ कितनी बड़ी मुबारक हम अपने को दे रहे कि हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वो अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, सबको एक ही सबको मुबारक मिलती है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीच वाले मुबारक देंगे, है ना। वैसे भी जब पढ़ाई में एग्जाम्स की रिजल्ट आती है तो जो पास हो जाते हैं, पास विद ऑनर हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास में आते हैं, तो जो फेल हो जाते हैं वो फर्स्ट क्लास वालों को मुबारक तो देंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो तो नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनेंगे। अब जो दास दासी बनेंगे उनको पता चला हम दास दासी बनेंगे, तो जो राजा रानी बनने वाले उनको तो वो मुबारक देंगे ना। तो नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं, जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। पास हुए लक्ष्मी नारायण बने तो उनकी पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो तो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, क्यों देवताओं की पूजा करते हैं, मनुष्यों को पता ही नहीं है। तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि ये क्या, तो बच्चों को ये चिंता रहती है, बाबा पूछ रहे हैं कि कैसे समझाएं, रहती है चिंता। हाँ रहती होगी, तभी तो देखो बाबा के कितने सेवा केंद्र खुलते जाते हैं, रोज कितनी सेवाओं के समाचार आते रहते हैं। तो बाबा कहते जरूर चिंता रहती होगी, फिर भी बाबा पूछ रहे हैं चिंता रहती है कि कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं, इसकी भी चिंता रहनी चाहिए। हम तो पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। हाँ मुझे याद है एक डबल विदेशी बहन दादी जी के पास आई, अच्छी नामी ग्रामी थी वो, तो दादी से पूछती है, उसने मुरली पढ़ी बाबा की, बाबा ने ये कहा ना सबको कैसे पैगाम पहुंचाए, इतनी बड़ी दुनिया है, कोने कोने में कहाँ मनुष्य बसे हुए हैं, तो ये कैसे पहुंचाया जाए। उस समय ये टेलीविजन नहीं था, ये उस समय की बात है। तो दादी से पूछा, मैं उस समय ट्रांसलेशन तो नहीं करती थी दादी के आगे, तो दादी से ये पूछती है, दादी कैसे होगा। अब दादी ने पता है क्या कहा, दादी ने कहा कोई चीज आकाश में होगी, अब अभी हम जानते हैं सैटेलाइट, तो कोई चीज ऐसे आकाश में होगी, उस आकाश से कैसे सबके घरों में जाएगी। माना टीवी जो है वो तो उसी सैटेलाइट के थ्रू ही होती है ना, तो ये आकाश से कैसे सबके घरों में जाएगी और सबको घर में बैठे संदेश मिल जाएगा। तो देखो दादी जी ने उस समय ये कैसे कल्पना की थी और विचार सागर मंथन ने किया होगा। तो उस समय उसके बाद जैसे टीवी में हमारे शो आने लगे, तो जब आते थे शुरू में तो हमने दिया टीवी में, तो लोग हमको कहते थे, किसी ने हंसी में मुझे कह दिया आप रोज मेरे घर में आती हो। मैंने कहा मैं आपके घर में कहाँ आती हूँ, हाँ टीवी पर आती हूँ, रोज टीवी पर आते हैं ना, तो टीवी पर प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, सब देखते हैं, सब देखते हैं, अभी शिवानी को सब देखते हैं, तो कैसे वो इसीलिए खींच करके आते हैं। और सबसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं, शिवानी यहाँ रहती है, अभी यहाँ तो नहीं रहती, वो तो गुड़गांव में रहती है पर आती रहती है, तो इसीलिए क्योंकि टीवी में देखते हैं तो आकर्षित होके आते हैं, तो सबके घरों में पहुंच जाते हैं, तो बाबा का संदेश टीवी द्वारा तो सबको मिल ही रहा है, पर उस समय ये नहीं था। तो देखो बाबा कहते हैं, हाँ दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं, बाबा ने कहा था पर्चे गिराओ सबके, सबको तो पहुंचेंगे, लेकिन पर्चे तो कहाँ उड़ जाते थे, पता भी नहीं चलता था, हवा में कहीं जंगल में चले गए या कहीं रेगिस्तान में चले गए, तो सबको तो मिलते नहीं थे। तो बाबा को बच्चे कहते थे, बाबा ये तो पर्चे तो गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, नहीं मिलते लोगों को। तो बाबा कहते हैं, पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं। हाँ, बाबा को मालूम है कि सबको नहीं मिलते पर्चे गिराने से। ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के, नहीं तो ऐसे भी कह देते सब रास्ते परमात्मा से मिलने के लिए। परमात्मा वो चोटी है, कई रास्ते हैं चोटी तक पहुंचने के, कई रास्ते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं जो चोटी पर पहुंचने के रास्ते तो अनेक है, लेकिन कौन सा रास्ता आप चुनोगे। अब माउंट आबू आने के कई रास्ते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, हाँ वो पहाड़ों से चढ़ के भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता, सहज रास्ता कौन सा है, गाड़ी में बैठो और पौने घंटे में यहाँ पहुंच जाओ। तो सहज रास्ता चाहिए ना, कठिन रास्ता नहीं चाहिए। तो ये सबसे सहज रास्ता है राजयोग। तो बाबा कहते हैं, तो बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते हैं ये सब अनादि चलता आया है, सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ। अनादि का अर्थ भी नहीं समझते तुम्हारे में भी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म वो है सुख, 21 जन्म ज्ञान की प्रारब्ध वो है सुख, फिर है दुख। तो तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है किसने बहुत भक्ति की है। ये सब रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते हैं। क्या करे, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल न सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े और सारे पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर सब स्वर्ग में आ जाए, और सब तो स्वर्ग में आने नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सब स्वर्ग में आए। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं दुनिया में बिखर गई है, उनको कैसे समझाएं जो वापस देवता धर्म में आए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए और धर्मों में चले गए हैं, कैसे पता चले। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई नहीं जानते कि हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये हिंदू भी नहीं जानते, ये भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे, बरोबर हम उसी धर्म के हैं। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया, भारत में इस समय तो कोई राजा ही है ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। इस समय कोई राजा ही नहीं है, और शक्ति में फंस के राजा ही हो जाती है, तो किसको जीता, किस पर जीत पाई जो तुरंत उनको राजा ही मिल गई। तो इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया, भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं है जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वो तो लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं, लक्ष्मी नारायण लड़ाई करके राजा ही नहीं पाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है वही को पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है और औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो उनको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताए तो पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे, बोलो तुम ईद की मुबारक किसको देते हो? ईद मुबारक करते ना, तो ये ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो ये पक्का निश्चय है। जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है ये तो वर्षों से तुम करते आए हो। हर साल ईद आती है तो तुम वर्षों से करते आए हो, कभी खुदा के पास आएंगे भी या नहीं, जाएंगे भी या नहीं, मुझ पड़ेंगे? बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने लिए, इसलिए इतना सब शास्त्र या जो कुछ भी करते हैं किस लिए, क्या करने लिए? तो ऊंच से ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो, आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है, अभी इनको बहिष्ट तो नहीं कहेंगे, इस दुनिया को स्वर्ग तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित है तो पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जाएं? वहाँ विकारी आत्मा तो होती नहीं, वॉइसलेस होनी चाहिए आत्मा, कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है, बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं, युक्तियाँ निकालनी चाहिए किसको कैसे समझाएं। ऐसे किताब भी बनी है मुसलमानों के लिए, कैसे उनको ये ज्ञान सरल करके वो लिखा, ऐसे किताबें बनी है किसको कैसे समझाएं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति बात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा सर्व की मुबारक के प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है, तभी सबकी मुबारकें मिलेगी। वरदान करण हार और करावन हार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। करण हार और करावन हार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। मैं निमित्त कर्म योगी करण हार हूँ, करावन हार बाप है। अगर ये स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई, ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। कौन सी अनुभूति बेफिक्र बादशाह बना देती है? बस बाप और मैं, बस तीसरा न कोई। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय गलती से भी व्यर्थ विचारों का जो कोई वो ताज उठा लेते हैं, बोझ उठा लेते हैं, तो ताज के बजाय क्या मिलता है, फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर चढ़ जाते हैं, फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। स्लोगन, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। अव्यक्तिशाली, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। ज्वाला रूप की याद कैसे रहे, रोज हम सुनते हैं अव्यक्त इशारों में। चलो, कल रविवार है और हमारी मीठी मीठी मोहिनी बहन जो दादी के साथ रहती थी, उनकी उनको उनका दिन है और 7 सितंबर को उन्होंने देह त्याग किया था, तो कल खास उनके निमित्त भोग लगेगा। रविवार है लेकिन यहाँ भोग लगाएंगे कल, तो आप सभी को बता दे। बाकी तो भट्टी वाले आज सब जा रहे हैं, जो आज जा रहे हैं हाथ उठाए, देखो इतने सारे हाथ जा रहे हैं। आप सबको फिर आना है, जा नहीं रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। बाबा कहते जाते हैं आने के लिए। चलो, ओम शांति। कल भी कोई जाएंगे भट्टी वाले, थोड़े कल जाएंगे। अच्छा।